Hello and welcome to Vimo Live. I'm Vimo. This is live. Today is Wednesday, 8 p.m. आज की स्ट्रीम फॉर द मोस्ट पार्ट हिंदी में होने वाली है. सो डोंट वरी इफ डोंट कम आफ्टर मी इफ आई से दैट इफ आई डोंट यूज इंग्लिश मच. बट बिकॉज द इंट्रोज एटसेट्रा आर यूजुअली इन इंग्लिश, आई जस्ट गो थ्रू ऑल दैट. दिस लाइव स्ट्रीम हैपन्स एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे. ओह शिट, आई जस्ट रियलाइज मेरे नाम के नीचे को क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स लिखा हुआ आ रहा है. एक सेकेंड, किधर है? हाँ, आई डोंट लाइक इट. या सो this live stream happens every Wednesday and every Saturday at 8 p.m. On Wednesdays, I usually just read comments, but today I have a guest. On Saturday, I take callers. So if there is anyone in the chat who wants to talk to me face-to-face, come on Saturday. Today, you have the good opportunity of talking to my guest, asking him questions. Not talking face-to-face, but you can leave your questions in the chat and we'll do our best to answer. Guest hai Deepak Budh. He's a rationalist from our country and unka primary platform Instagram hai aur wo Instagram pe andhavishwaso ka khandan karte hain. और पोंगी बाबाओं के जो पोंगी बाबा होते हैं उनके क्लेम्स का खंडन करते हैं, जातिवाद के बारे में बात करते हैं और ही इज ऑल्सो अ पत्रकार. सो वी विल टॉक टू हिम अबाउट ऑल ऑफ दैट एंड वी विल टॉक अबाउट हिज करियर, हिज वर्क सो फार, द काइंड ऑफ रिएक्शंस ही गेट्स. उससे पहले आप सबको याद दिला दूं कि इस चैनल को सपोर्ट करने का तरीका है मेंबर बनना. मेंबर आप बन सकते हैं ज्वाइन बटन दबाकर, जो बटन नीचे है, और पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/vimo पर मंथली या फिर एनुअल मेंबरशिप लेके, या आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.vimo.in. वहां पे एक सपोर्ट बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी इच्छा की कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. इस सब के अलावा आप UPI से डायरेक्टली पैसे भेज सकते हैं, vimo@upi. सो विदाउट मच फर्दर अडूडू, आई वुड लाइक टू ब्रिंग माई गेस्ट ऑन स्क्रीन. हियर इज दीपक बुद्ध. हाई दीपक, आप म्यूट हैं. म्यूट.
हेलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू.
कोई बात नहीं, आपका बहुत शुक्रिया एक्सेप्ट करने के लिए. आप बहुत बिजी रहते होंगे अपने प्रोफेशनल काम में प्लस अपने इंस्टाग्राम काम में, उसके बावजूद आपने समय निकाला. बहुत देख के मतलब खुशी हुई. और आज एक अजीब चीज भी है क्योंकि लाइव स्ट्रीम शुरू होने से पहले इस लाइव स्ट्रीम को 20 लाइक मिल चुके थे, जो कि नॉर्मली होता नहीं यहाँ पे.
ओह थैंक यू सर. एक्चुअली एक तो ये कि मैं, मेरा काम है जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ और जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, यही मेरा प्रोफेशन है, यही मेरा काम है और यही मेरा मिशन है. तो आई एम नॉट बिजी, तो इस काम के लिए मैं हमेशा फ्री
हूँ. थैंक यू. आपके इंस्टाग्राम बायो पे रैशनलिस्ट सोसाइटी मैगजीन करके कुछ लिखा हुआ है, वो क्या है?
एक्चुअली एक rationalbook.com के नाम से मैंने एक मैगजीन शुरू किया था. उस टाइम मैं वीडियोस नहीं बनाता था. अच्छा. तो उस मैगजीन के थ्रू उसमें मैंने एक बोले तो कुछ इस तरह के मैंने एक सेकंड, जरा मेरा वीडियो आ रहा है क्या?
थोड़ा फ्रीज हो गए हैं. मैं एक सेकंड आपको स्क्रीन से हटा के फिर वापस लाता हूँ. हाँ, अभी ठीक हो गया. अभी ठीक हो गया.
एक्चुअली उसके ऊपर मैंने जो चीज़ आज मैं वीडियो के रूप में प्रेजेंट कर रहा हूँ उसको मैं आर्टिकल्स के रूप में और न्यूज़ के रूप में मैं लोगों को पहुँचाता था और अच्छा. वेब स्टोरीज के थ्रू मैंने लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करी और उसके ऊपर ऑलमोस्ट 1 मिलियन का ट्रैफिक मैं उसके ऊपर गेन कर चुका था. लेकिन कोज टू मल्टीपल रीजन्स मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा कि मुझे अपना वीडियोज के थ्रू उसको बताना चाहिए जो कि ज़्यादा इम्पैक्टफुल है. सो इसलिए अच्छा. मैंने इसको फिर लीव कर दिया.
ओके okay. So, आपने रैशनल बुक कब से कब तक चलाई?
मैंने रैशनल बुक शुरू किया था 2022 में अगस्त के मंथ में मैंने उसको मतलब उसके डोमेन परचेस करना और सारी चीजें मैंने शुरू करी.
अच्छा.
और विद इन 6 मंथ्स में मैंने उसको 1 मिलियन जो नोटिफिकेशन बेल होते हैं वेबसाइट के, मैंने उसको वहां तक पहुंचा. 1 मिलियन मेरे ऑलमोस्ट कह सकते हैं सब्सक्राइबर तौर में थे. तो मैंने उसको वहां पहुंचाया और लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रह पाई उसके ऊपर. पर डे हमें 10 से 12 आर्टिकल्स डालने होते हैं वेबसाइट अगर आप चलाते हैं तो, जो कि मेरे लिए बहुत टिपिकल था. मैं इतने सारे कंटेंट और इतने सारे आर्टिकल्स, इतनी सारी नई चीजें लेकर आऊं, तो इसलिए फिर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया. तो मैंने सोचा कि वीडियोस बनाने का बेस्ट वे है.
और अब आप इंस्टाग्राम पे प्राइमरीली वीडियोस बनाते हैं?
यस एग्जैक्टली.
यूट्यूब पे क्यों नहीं?
इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पे भी. मतलब मेरा मानना यह है कि यूट्यूब पर अभी मेरा जो चैनल है उसके ऊपर मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ. आई मीन टू से जितना मेरा डेडिकेशन इंस्टाग्राम के लिए, वो इंस्टाग्राम के लिए इसलिए ज्यादा है क्योंकि इंस्टाग्राम की ऑडियंस को आप एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जिस तरह से हम एक परसेंट कह सकते हैं या फिर एक आप डेटा एनालिटिक्स से कह सकते हैं कि भाई जो यूट्यूब के जो हमारा ऑडियंस है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच्योर है, वो एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर टिका रहता है, सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन जब बात आती है इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पर लोग स्क्रॉल करते करते दिन रात बहुत सारी अननेसेसरी चीजों को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पर अटेंशन गेन करना ऑडियंस का ज्यादा बेटर तरीका है। तो इसलिए मैंने मेरी प्राइमरी जो है वो इंस्टाग्राम है।
नहीं, मैं मेरा सिचुएशन ये है कि मेरा इंस्टाग्राम प्राइमरी, टेक्निकली अगर नंबर से देखने जाऊँ तो मेरा प्राइमरी है, पर वहाँ से पैसे नहीं बनते, वहाँ से इस काम को सस्टेन नहीं किया जा सकता, इसीलिए यूट्यूब पे आना ही पड़ता है कभी ना कभी, क्योंकि यूट्यूब कैन बी मोनेटाइज्ड एंड इंस्टाग्राम कैन नॉट बी। कई लोग इस चीज़ को लेकर सुनते हैं, अच्छा तो पैसों के लिए कर रहे हो, तो मेरा जवाब होता है भैया तुम जो भी कर रहे हो तुम भी पैसों के लिए कर रहे हो, सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहा, ये अलग बात है। कोई भी काम कोई भी सिर्फ पैसों के लिए नहीं करता, अगर तुम डॉक्टर हो तो भी तुम पैसों के लिए नहीं कर रहे, तुम अपने मतलब किसी मॉरल रीजन से कर रहे हो। सो आप अपने करियर के बारे में एक थोड़ा सा इतिहास दें, आप क्या करते थे, अभी क्या करते हैं, जो भी बता पाए।
एक्चुअली मैं वैसे, मेरा बर्थ प्लेस मेरा हरियाणा का है, लेकिन मैं अभी दिल्ली एनसीआर के अप्रोक्सीमेटली एरिया में रहता हूँ। तो और मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई है वो मेरी हरियाणा में ही हुई है, उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपने जहाँ पर मैं शिफ्ट हूँ अभी, यहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था। और उसके बाद फिर मैंने कोशिश की कि मैं लॉ की तरफ जाऊँ, मैं वकालत की स्टडी करूँ, लेकिन कुछ मेजर रीजंस हुए लाइफ में, कुछ बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिन्होंने मेरा बिल्कुल जो ट्रैक है बिल्कुल चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे जैसे कि एक 2021 में मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने ही घर से काम करना मैंने शुरू करा, मैंने जॉब करना नहीं शुरू करा, जहाँ मैं अभी बैठा मैंने यहीं से काम करना शुरू किया था। तो यहाँ बैठे बैठे ही मेरे सारे माइंड में आइडियाज़ आए सोचने की, मतलब ये चीज़ शुरू से चलती थी, बहुत पहले से ही इन चीज़ों को लेकर काफ़ी अवेयर थे, लेकिन इसको एक प्रोफेशनल तरीके से करने का जो मेरा आइडिया आया था वो मेरे को यहाँ बैठे बैठे आया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें किया, बहुत सारे इंसिडेंट्स लाइफ में हुए कि भाई सभी चीज़ों को इमोशनल तरीके से नहीं सोचने के, वो है जो कि हर चीज़ को हम इमोशनल तरीके से नहीं सोच सकते हैं कि भाई इमोशनली सोच लिया और उसके बाद उसका परसेप्शन बनाकर हमने रख लिया। तो काफ़ी डीप थिंकिंग करने के बाद मुझे लगा कि भाई अब लोगों को इसके बारे में हमें अवेयर करना चाहिए कि दैट इज बहुत सारी चीज़ें।
अच्छा, तो आपका आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे, आप इंस्टाग्राम पे लाइव स्ट्रीम्स भी करते हैं ऐसे वाले जहाँ पे आप लोगों से बातें करते हैं, डिबेट डिस्कशन करते हैं, ये रिसेंटली शुरू किया है या काफी समय से चल रहा था?
नहीं, ये मैंने मतलब वैसे मैं कभी कभार जो लाइव स्ट्रीम कर लेता हूँ केवल इसलिए कर लेता हूँ कि जो ऑडियंस मेरे को फॉलो कर रही है उनके संग मैं, जैसे कि बहुत सारे डीएम के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो क्या किया कि लाइव स्ट्रीम में आ गया, भाई आप जो भी पूछना था आप यहाँ आके पूछ लो, मैं उनको जोड़ लेता हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मेरी काफी सारी बातों से एग्री नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं कि भाई मुझसे वो डिबेट करने के लिए लाइव स्ट्रीम में जुड़ जाते हैं। वो स्पेसिफिक डिबेट का पार्ट नहीं, वो पार्ट सिर्फ इसलिए था कि अपने लोगों से बात कर पाऊँ। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैंने कोई वीडियो बना दिया, मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि लाइव आ जाता हूँ एक वीडियो अपलोड करने के बाद, तो मेरे को बेहतर।
इंस्टाग्राम पे कमेंट्स बहुत अजीब होते हैं, कमेंट्स का रिप्लाई करना इंस्टाग्राम पे बहुत मुश्किल होता है, एक तो इतनी सी जगह, दूसरा उंगली से टाइप करो, फिर कोई गालियां दे रहा है और 8-10 इमोजी भेज रहा है, उसको रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ आ जाओ सैटरडे को, आ जाओ फेस टू फेस बात कर लेंगे, वो बहुत आसान हो गया मेरे लिए। यूट्यूब ने इंस्टाग्राम आसान कर दिया, ये बोल रहा हूँ। सो भारत में रैशनलिस्ट की संख्या आपको बढ़ती हुई दिख रही है, और क्या ये सफिशिएंट स्पीड से बढ़ रही है? आपको लगता है कि हम लोग मिलके कुछ उखाड़ पाएंगे या बस हवा में?
अगर बात करें कि भाई जो हमारी रैशनैलिटी की स्पीड के बारे में जो आपने बोला कि भारत में रैशनैलिटी की स्पीड बढ़ रही नहीं बढ़ रही, और उसमें हमारे जो जो लोग जिस तरह से बोलें कि धार्मिक लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में हम अभी कहीं भी नहीं है। ठीक है, हम माइनॉरिटी के भी मैं बोलूँ
पॉपुलेशन में नहीं
है, माइक्रो माइनॉरिटी में है। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने पूछा कि भाई ये दिक्कत है, ये नहीं है, ये एक्चुअली दिक्कत इस तरह से है क्योंकि जिस स्पीड से अभी हमारी रैशनैलिटी का हम वीडियोस बना रहे हैं, आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, वो मुझे स्पीड इसलिए स्लो लग रही है क्योंकि मेरा कंसर्न इस, देखो हर कोई अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है वो ठीक है, ठीक है, लेकिन जो दिक्कत मेरे को यहाँ लगती है कि अगर हमने इस चीज को रैशनैलिटी को स्प्रेड करने में अगर हमने 20-40 साल ले लिए, तो हम उस स्पेसिफिक बदलाव का एंजॉय नहीं कर पाएंगे। वो क्यों? वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम केवल एज ए रैशनल एज ए ह्यूमनिस्ट हम केवल ये नहीं सोच सकते कि दुनिया रैशनल हो जाए, हमें ये भी देखना पड़ेगा अगर 40-50 साल में हमने बदलाव ले भी आए तो उस बदलाव का क्या फायदा जब हमारे लोग ग्लोबल वार्मिंग से मर रहे होंगे, जब वो भुखमरी से मर रहे होंगे, जब वो सुबह उठेंगे तो उनके घर के आस बाहर जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल भी 30-35 डिग्री होगा। उस आजादी का उस रैशनैलिटी का हमारा फायदा क्या होगा? जब तक ये सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हमारे देश के हमारे दुनिया के इस पृथ्वी के एनवायरमेंट को बिगाड़ चुके होंगे तो उस रैशनैलिटी का हमें फायदा क्या होगा? तो इसलिए मेरा कंसर्न ये है कि इसलिए थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि काफी स्पीड काफी स्लो है, हमें इसको फास्ट करना होगा अदरवाइज दे विल डिस्ट्रॉय आवर अर्थ। मुझे बस ये कंसर्न है, केवल मैं रैशनैलिटी के बारे में सोचूं तो ये थोड़ी सी मेरे को लगता है कि बहुत एक अपने बारे में सोचने वाली बात हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें ये भी पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं हो जाएगा इतनी जल्दी नहीं होता, मैं मान रहा हूँ इस चीज को, बहुत सारी चीजें बदलाव नहीं लेकर आती हैं, लेकिन अभी जो कंडीशन चल रही है हमारे अभी आप देखेंगे कि भाई इस चीज के बारे में कौन बात करेगा कि भाई जो हमारी हमारा इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें साइंटिफिक जो रिसर्च है वो कह रहे हैं कि आने वाले 20-22 सालों में मुंबई से शहर डूबने वाले होंगे, ऑलमोस्ट वो ऐसे हो जाएंगे। तो भाई हम उस चीज को एंजॉय कब कर पाएंगे? हमारे हमारे लोगों का सपना है ना मुंबई जाना, हमारे लोगों का सपना है ना कि बड़े बड़े महानगरों में बसना, तो कब कर पाएंगे? तो मेरा बस कंसर्न इस बात का है कि भाई
मुंबई लोग फिर भी जाएंगे बस स्विमिंग,
तो ये मेरा थोड़ा कंसर्न है। तो मेरा ये थोड़ा सा कंसर्न है इस चीज को लेकर। स्पीड ठीक है, मतलब सब अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंक्रीज आना चाहिए हमारे लोगों को थोड़ा सा। जैसे कि मान लो अभी लोग कमेंट्स कर रहे हैं और जो इंस्टाग्राम पर आपको फॉलो कर रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, उनको केवल फॉलो करने से काम नहीं चलेगा, उनको थोड़ा सा एटलीस्ट हमें बोल रहे हैं हम क्रिएटर्स बढ़ जाएं। केवल विमो और दीपक की वीडियो क्यों बनाएं भाई, आप भी बनाओ ना, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप भी दिखाओ।
मतलब अगर वीडियो बनाना किसी का स्किल सेट में भी नहीं है तो कम से कम परिवार के लोगों से बात तो कर ही सकते हो।
एग्जैक्टली, बदलाव हम जिस बना कर लेकर आए इससे फर्क नहीं पड़ेगा इतना, मुझे लगता है कि संख्या बढ़नी चाहिए।
मैं आपके जवाब से के ऊपर जंप करता हुआ एक और सवाल पूछना चाहूंगा जो इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है, और वो है कि आपने कहा कि रैशनैलिटी स्प्रेड करने से क्या होगा। हेलो, कैन यू हियर मी दीपक?
हाँ सर, आवाज आ रही है।
आपका मतलब कनेक्शन थोड़ा फ्लिकर कर रहा है शायद, तो दैट्स ओके। मैं ये पूछ रहा था कि रैशनैलिटी को इंक्रीज करने से हो सकता है लोगों में अवेयरनेस आए, पर इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक ये है कि मुझे नहीं लगता कि रैशनैलिटी हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोग सरकारों के तलवे इसलिए नहीं चाटते क्योंकि वो इरेशनल है, लोग जातिवाद में इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि वो इरेशनल है, लोग इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि ये जो सिस्टम्स हैं, सोशल सिस्टम्स हैं, ये उनको पावर देती हैं और उस पावर को कोई छोड़ना नहीं चाहता, और पावर को छोड़ना ना पड़े इसीलिए लोग बहाने बनाते हैं, ये साइंटिफिक है, ये प्राचीन है, 30,000 साल पहले हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स जानते थे वगैरह वगैरह। क्या उसके बारे में आपको क्या लगता है?
नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बोला। ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे नहीं कि उनको पता नहीं है, उनको वो अवेयर नहीं है, वो
पढ़े लिखे
वो अपने प्रिविलेजेस को छोड़ना नहीं चाहते, है ना, वो चाहते नहीं है कि भाई उनका कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाह रहे, वो नहीं चाह रहे कि भैया जो उनको पता है कि वो अपना आराम से पॉलिटिशियन एक करियर में या फिर पॉलिटिकल करियर में या फिर किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करके उसको अच्छा खासा फायदा मिल रहा है तो उसको विरोध क्यों करेगा? ये मैं वही ना कि भाई आप हमको केवल अपने बारे में नहीं सोचना है ना, केवल अपने बारे में सोचेंगे फिर तो हो लिया काम, फिर तो कुछ काम नहीं होने वाला। ठीक है, अभी आपको भी थ्रेट मिलते होंगे डेफिनेटली कभी ना कभी, तो मुझे भी थ्रेट मिलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो आप एक चीज में मेरी बहुत सारे लोग मेरी बातों से इस चीज से एग्री नहीं होते, लेकिन मेरा मानना क्या है पर्सनली, आपको व्यवस्था बनाने के लिए पहले क्योस होना पड़ेगा। किसी चीज की व्यवस्था बनती है उससे पहले क्योस होता है। हमारे देश में जब तक बड़े स्तर पर आंदोलन नहीं होंगे, मैं इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू रख के बोल रहा हूँ, आंदोलन नहीं होंगे और जब तक लोगों की जो प्रिविलेजेस हैं वो हाईजैक नहीं होंगे गवर्नमेंट के द्वारा, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। अब सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल, मैं एक चीज एक एग्जाम्पल में बोलना चाह रहा हूँ, सपोज दैट आज रिजर्वेशन खत्म हो जाता है, ठीक है, तो लोगों को अरे क्या हो गया ये, तो उनको दिक्कत हो जाएगी, तो अभी लोगों को किक नहीं लग रहा है, अभी वो चल रहा है, गाड़ी चल रही है, दे गए हमारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, बाबा साहब थे, बहुत सारे लोग थे जो हमको बहुत सारे प्रिविलेजेस दे गए हैं, तो हम उनके बलबूते जी रहे हैं, हम अभी बहुत कंफर्ट जोन में। जब तक हमको किक नहीं लगेगा, जब तक उन लोगों को किक नहीं लगेगा कि रिजर्वेशन हट गया फॉर एग्जांपल, या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही खत्म कर दी, या प्राइवेट सेक्टर में कुछ पर्टिकुलर लोगों का बैन कर दिया, तो जब तक लोगों को किक नहीं लगेगा वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे। और मुझे मेरा मानना है कि ये तो ठीक चल ही रहा है, जॉब बता रहे हैं वो तो चल ही रहा है, लोग निकल नहीं रहे अपने कंफर्ट जोन से, वो अपनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो उनको पता है कि सारी चीजें हो रही हैं, उनको ये सारी चीजें के बारे में पता है कि भाई ये पार्टी है, इसने यहाँ पर ये गलत काम किया है, लेकिन वो उसका विरोध इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसका प्रॉफिट उससे जुड़ा हुआ है, और धर्म का विरोध वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसकी आस्था जुड़ी हुई है, है ना। और कुछ लोग सो कॉल्ड लोग इसलिए धर्म का विरोध नहीं करेंगे, क्यों इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनका रोजगार उसके ऊपर चल रहा है, उसको पता है कि भाई अगर ये बंद तो फिर कहां से कुछ होगा। दिक्कत ये है, अगर हमको अपने आने वाली जनरेशन के बारे में सोचना है तो हमें अभी से अवेयर करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस जनरेशन का जीवन खराब होगा तब जाके आगे वाले जो जनरेशन है वो ठीक होंगी। हम अपने 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 आप को बिल्कुल परफेक्ट रख के हमारी जनरेशन को सही नहीं कर सकते और उनको रैशनल नहीं बना सकते। और आपने बताया जैसे कि रैशनल के बारे में, रैशनैलिटी मेरा मानना है कि आप अपने आप को रैशनल कह नहीं सकते अगर आप रिमो को नहीं देख रहे, अगर आप साइंस जर्नी को नहीं देख रहे, अगर आप ह्यूमन बी साइंस को नहीं देख रहे, आप अपने और खाली देखना ही नहीं, मतलब उनके अगर आप देख रहे हैं एटलीस्ट ये तो है कि आप उस ट्रैक पर हैं, ठीक है, आपको सब कुछ पता है, आप जानते हैं भाई कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, कास्टिज्म प्रॉब्लम है देश की, रिजर्वेशन का विरोध करने वाले लोग एक्सट्रीम लेवल पर, उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं कि रिजर्वेशन क्यों है क्या है, वो गलत है, लेकिन वो जब तक उस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे अपने कंफर्ट जोन से कैसे हम बदलाव लेकर आ पाएंगे। मेरा मतलब सिंपल सा यही है, क्यों जरूर फैलेगा व्यवस्था बनने से पहले, और डेफिनेटली होगा देखना।
तो दीपक आपने कहा
सारी चीजें सही तरह से चलती रहे और बदलाव आ जाए, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल,
दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन। या इट इज गोइंग टू, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि हाँ प्रोटेस्ट करो पर लोगों को इनकन्वीनियंट क्यों करा रहे हो, मतलब बिना इनकन्वीनियंस के प्रोटेस्ट तो हो ही नहीं सकता बेटा, तुमको क्या लग रहा था तुमको तुम्हारे हाथ में आके कोई चेंज पकड़ा देगा। अगर तुम मानते हो कि प्रोटेस्ट करना वाजिब है तो तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि ये वाजिब चीज बिना किसी को इनकन्वीनियंट किया जा सकता है। कोई हिंसा की बात नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कर रहा कि सबको जला दो, पर अगर किसी के बैठ के ये बोलने से कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है और मुझे जस्टिस चाहिए, तुमको इनकन्वीनियंस हो रहा है, तो अपने आप ऊपर देखो, आईने में झांको, सोचो प्रॉब्लम क्या है तुमको। वैसे आपने कहा कि कई लोग धर्म को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उनका नुकसान हो रहा होता, उनका खुद का सोशल स्टेटस, उनकी आस्था के ऊपर नुकसान हो रहा है। उसके ऊपर एक सवाल है सूर्या से, ये रहा क्वेश्चन टू दीपक, वुड यू से दैट रिलीजन एक्ट्स लाइक अ फॉल्स सोशल सेफ्टी नेट। आपको लगता है कि रिलीजन सोशल सेफ्टी तो देता है लोगों को, पर वो जो सोशल सेफ्टी होती है वो असली सोशल सेफ्टी होती है या बस सोशल सेफ्टी का धोखा है?
एक सेकंड सर, मैं कैमरा ठीक कर लेता हूँ दोबारा।
हाँ थोड़ा फ्रीज हो रहा है, थोड़ा कनेक्शन अप डाउन हो रहा है। हाँ
अभी ठीक है। एक एल्बर्ट आइंस्टीन का कोट था, मे बी शायद उन्हीं का कोट था, उन्होंने बोला था कि अगर आप एक उनका कोट किस इस तरह का था कि भाई अगर आप क्राइम ही नहीं कर रहे हैं केवल इस डर से कि आपको 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 धर्म का वो है कि भाई मैं अपने धर्म की वजह से क्राइम नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक क्रिमिनल है। तो भाई सिंपल सी बात है, ठीक है, एक हद तक हो सकता है, एक हद तक, एक लिमिट तक रिलीजन ने कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी को डेवलप करने में एक हद तक एक कहीं ना कहीं रोल प्ले किया हो सकता है, हमारे जैसे कि रिलेशनशिप को बनाने में, हमारे पारिवारिक संबंधों को बनाने में हो सकता है, बट उसका कोई मेजर एडवांटेज नहीं है। आप ये मत सोचो वो इसलिए नहीं है क्योंकि केवल पृथ्वी पे हमें स्पीशीज नहीं है, शेर भी रह रहे हैं और गधे भी रह रहे हैं, घोड़े भी रह रहे हैं, उनकी फैमिली है और दे नो एक्चुअली कि उनका अपना परिवार पालन पोषण कैसे करना है। अब आप उसको सेक्स रिलेटेड मत करना, इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल रहा है, चीजों के समय के साथ साथ हमारे सोशल एवोल्यूशन भी हुआ है, चीजों में बदलाव आया है, कभी ना कभी ऐसा भी रहा होगा जिस समय हम इतने डेवलप नहीं रहे होंगे जिस तरह से हम टेक्निकली बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने परिवार के अंदर ही अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हो, लेकिन आने वाले धीरे 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 सोशल एवोल्यूशन की वजह से वो बदलाव आए हैं और आज हम इस स्तर पर हैं। हमको इंटेलिजेंस जो स्पीशीज है वो इसलिए नहीं कहा जाता, हमने हमेशा अपने ब्रेन के साथ साथ अपना अपना सोशल एवोल्यूशन भी किया है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। धर्म ने केवल डरा कर कि अगर तुमने ये किया, अगर तुमने लड़की को छेड़ा, अगर तुमने उसमें से गलत किया या फिर चोरी करी या फिर वो करा तो भगवान तुम्हें सजा देगा, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं क्रिमिनल हो और भगवान के डर से, इस डर से क्राइम नहीं कर रहे हो, इट मींस ठीक है, तो इसमें कोई बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं आज आप उस रिलीजन की जगह आज कॉन्स्टिट्यूशन का रखकर देखो और बोलो इस बात को कि भाई अगर तुमने चोरी करी तो भगवान तुम्हें सजा देगा, और एक तरफ आप उसी बंदे को बोलो चोरी करी तो कम से कम 10 साल की सजा होगी, आप देखना वो बंदा किस चीज से डरता है, वो डरेगा डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि वो दिख रहा है।
हम इस बात को कई बार नजरअंदाज कर देते हैं कि कई लोग जो कहते हैं कि मुझे भगवान का डर है, उन्हें असल में भगवान का डर नहीं होता है।
एग्जैक्टली उन्हें भगवान का डर नहीं होता है वो मतलब हमें पता भी है, हम इस चीज को जानते भी हैं यार कि भाई नहीं कुछ हो रहा है, नहीं उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, अगर है भी तो उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। हमको पता है कि मैं आराम से, और उसने मेरे को पैदा ही क्यों करा, मैं कह रहा हूँ भगवान ने मुझे क्यों पैदा करा, मैं उसके विरोध में यहाँ बैठा हूँ लाइव स्ट्रीम में, मुझे क्यों पैदा किया, तो ऐसा नहीं है। ये सब बकवास बातें हैं कि वो कुछ करता है कुछ नहीं करता, मैं कह रहा हूँ अगर है भी तो आप केवल साबित करें, हम भी मानेंगे और हम मानेंगे कि आपका जो रिलीजन का स्ट्रक्चर है उसी की वजह से आज दुनिया में सारी सोसाइटी सही से काम कर रही है, बट ऐसा नहीं है। तो अगर कोई स्पेसिफिक और स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो, चाहे आपके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ हो, देन यू कैन प्रूफ, हम उसको मान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, हमारा कोई विरोध थोड़ी है इस चीज़ से कि हम किसी पर्टिकुलर धर्म को इसलिए कह रहे हैं कि हाँ भाई मैं इस रिलीजन में था, इस धर्म में था, मेरे साथ कास्टिज्म हुआ इसलिए छोड़ दिया, मैं इस्लाम की भी बोल रहा हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी की भी बोल रहा हूँ, मैं जोनास्टिज्म की भी बोल रहा हूँ, मैं सबकी बोल रहा हूँ। यू हैव टू प्रूफ, आपको करना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। आप लोगों को इतने सालों से मूर्ख बना रहे हैं, ऑलमोस्ट हजारों सालों से मूर्ख बना रहे हैं लोगों का, तो उसका हमारे लाइफ में रोल क्या है? कुछ भी रोल नहीं है, मेरे हिसाब से तो कुछ भी रोल नहीं है आज के टाइम पर, हमें उसकी कुछ भी जरूरत नहीं है।
अच्छा, क्योंकि आप इस प्रकार के सवालों से फ्रीक्वेंटली डील करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, क्या अगर मैं आपको पूछूं कि आज तक जितने क्लेम्स आपने सुने हैं लोगों से, सबसे ज्यादा वाहियात और घटिया क्लेम कौन सा था? ऐसा कोई एनकाउंटर जिसके ऊपर आपको वीडियो बनाने पे विवश होना पड़ा दीवार पर सर मारने के बाद?
मुझे हुआ था भाई, वो हुआ था जब हमारे इसरो के चेयरपर्सन थे,
अच्छा वो
उन्होंने जब उन्होंने बोला था कि जो विज्ञान है आज का वो हमारे वेदों से आया है, भाई मेरे दिल पे चोट लगी थी। मतलब कुछ सेंस तो हो आपके। देखो एक चीज, मैं एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगा एक मिनट लेकर, अगर केवल मैं वेदों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी रिलीजन, किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट की, अगर उनके अंदर इतना विज्ञान है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उसकी कैलकुलेशंस भी दी गई होंगी। भाई मान लो ये दे रखा है कि हाँ भाई न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ बाद में बताया, उससे पहले हमारे ग्रंथ में है किसी में, तो इक्वेशंस दे रखी होंगी, उसके फॉर्मूलाज दे रखे होंगे, है ना, और भाई कुछ पेपर्स होंगे, बाकायदा पूरे रिसर्च पेपर्स होंगे, चलो वो भी नहीं है, लेबोरेटरी होंगी, ठीक है, तो कुछ तो होगा। जब विज्ञान आपको बता देता है आकर,
उसके बाद पता चलता है,
आप फिर बता रहे हो,
ये तो हमको पहले से पता था हमको।
और दूसरी बात, मैं इस बात को शॉर्टी से गारंटी देकर बोल रहा हूं, विमो भाई आप भी और जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आप एक कहानी लिखो, कोई भी कहानी लिखो, उसको विज्ञान से मैं जोड़ के दिखाऊंगा। आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, विज्ञान से मैं जोड़ के दिखाऊंगा। आप विज्ञान की दुनिया में रहते हुए विज्ञान से हर बातों को जोड़ सकते हैं। अब किसी ने इमेजिनरी स्पीशीज हमारे इंसान रहे हैं, उन्होंने कुछ लिख दिया तो उन्होंने बोला कि उड़न खटोला था, तो आप उसको आज रॉकेट से जोड़ रहे हो क्या? ये भाई आप, मैं कह रहा हूं अगर विज्ञान आपके ग्रंथों में था या फिर ऐसा कुछ था, तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपके पास पूरी साइंटिफिकली इक्वेशंस होनी चाहिए, आपके पास बाकायदा एक बहुत अच्छा डेटा होना चाहिए, और उनके बेसिस पर आप आज के अल्फा बीटा गामा और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नाम लिए बिना एक रॉकेट बना के दिखाओ। आप केवल संस्कृत का, केवल कुरान का, केवल बाइबल का इस्तेमाल करके, केवल आप एक भी विज्ञान की किसी भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इक्विपमेंट से लेकर रॉकेट तक बनाओ और उसको चांद पे भेज के दिखाओ।
तो क्यों नहीं कर रहे? बोला था किसी ने बोला कि तुम्हारे पास साइंस है, हमारे पास गॉड है, और साइंस की किसी को जरूरत नहीं। मैंने बोला तो एक काम कर, इंटरनेट कटा ले और कॉल कर।
ये अच्छा है।
भाई अगर नहीं कर पाया तो मान ले कि तुझे साइंस की जरूरत है। लोग अजीब अजीब चीजें बोलते हैं, बट या गुड पॉइंट। एक और सवाल जो इस बारे में था, आपने इसरो की बात की, इस प्रकार की चीज, आपको क्यों लगता है कि, हमने थोड़ी देर पहले भी इसकी बात की थी पर तब हम सोशल कॉन्टेक्स्ट में थे, आपको क्यों लगता है कि ऐसे कई लोग हैं जो कि अच्छे खासे एजुकेटेड लोग हैं पर फिर भी अपने धर्म के अंदर विज्ञान के ट्रेसेस ढूंढने और साबित करने की कोशिश करते रहते हैं?
हाँ देखो, इसको मैं ना उस हिसाब से
एक सेकंड यहाँ कोई चैट में सनातन भाई हैं, भैया डिबेट करना है तो सैटरडे को आओ, मैं करता हूँ फेस टू फेस, कैमरा ऑन रखना और फेस टू फेस आके जो भी पूछना पूछना, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, ठीक है? आज गेस्ट हैं दीपक जी, उनके लिए कोई सवाल है तो चैट में छोड़ दो। हाँ बोलिए दीपक जी।
ठीक है, तो देखो मैं अपने आप को पर्सपेक्टिव में रख के बता रहा हूँ कि मैं अपने आप को एक मेरी बचपन से जो मेरा पालन पोषण हुआ एक बहुत अच्छे हिंदू परिवार में हुआ। उसमें क्या था कि मैं सुबह उठता तो वीसीडी होती थी, मम्मी कैसेट लगाती थी और सुबह सुबह 10-15 गाने चलते थे माता के। मैं बहुत अच्छा परिवार में, हिंदू परिवार में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, सुबह सुबह हाथों पर दीवला लेता, ठीक है, और शनि मंदिर जाता था मैं। तो मैंने बहुत काम किए, ऐसा नहीं मैंने काम नहीं किया। हमें भी हर्ट होता है ये वाली बात जानकर कि भाई ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम बचपन से फॉलो करते आए हैं। लेकिन अब बात है कि मेरी अगर मैं सपोज दैट आपकी वीडियोस ने देख रहा होता है, फिर मैं उस प्रकार के एटमॉस्फेयर में ना हुआ था जिसमें मैं आ जाऊं, तो मेरी माइंड की जो कंडीशनिंग हो चुकी है मैं उससे बाहर नहीं निकलता। मुझे भाई, अब देखो आप कितने बड़े वैज्ञानिक बन जाओ, कितने बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, लेकिन बचपन में आपकी फीडिंग कैसी हुई है इंपॉर्टेंट ये चीज है। बचपन में आपके जो अभी आपको लगता है कि अगर कोई फ्रांस, हम एक देश को ले लेते हैं जिसकी एक नास्तिक देश है, तो फ्रांस में अगर कोई माँ बाप का जो बच्चे होते होंगे वो पूछते होंगे कि पापा ये किसने किया, तो वो ये बोलते होंगे कि हाँ बेटा भगवान ने किया। नहीं, वो उसको बस एक शायद इग्नोर कर देते होंगे या फिर उसको वो एक स्पेसिफिक तरीके से समझाते होंगे कि भाई ये ऐसा नहीं है बेटा, ये ऐसे है, लेकिन डेफिनेटली वो ये नहीं बोलते होंगे कि भगवान ने करा, वो नहीं करते होंगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस हमारे बचपन में माइंड में फीड कर दिए गए हैं और सवालों से हमको बचाने के लिए भगवान का ठप्पा लगा दिया गया है। जहां पर हमको लैक ऑफ नॉलेज रहा है हमने वहां भगवानों का ठप्पा लगाया है, जिसकी वजह से आज भी हमारे लोग साइंटिस्ट तो जरूर बन रहे हैं, वैज्ञानिक जरूर बन रहे हैं, लेकिन वो जो इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं आज वो वेस्टर्न के बनाए हुए हैं। वो केवल मुझे एक चीज बताएं कि भाई जिस प्रकार से सर स्टीवन हॉकिंग थे, अल्बर्ट आइंस्टीन थे और भी बहुत सारे वैज्ञानिक थे, मैं भारत के वैज्ञानिक को नेग्लेक्ट नहीं कर रहा, वो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या कोई भी ऐसा वैज्ञानिक है जिसने आज तक गॉड को लेकर भारत में रिसर्च करी हो? जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे और सर स्टीवन हॉकिंग थे, उन्होंने गॉड को लेकर बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ बोला भी था, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वो उसके बाद उसके कंक्लूजन पर आए कि वो माने या ना माने। लेकिन आप तो उसी बात को मानकर चल रहे हो जो बात आपके माँ बाप ने आपको बता दिया, आप सवालों का आंसर लाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपको पहले बताया कि पृथ्वी भगवान ने बनाई है, लेकिन विज्ञान ने बता दिया कि पृथ्वी ऐसे ऐसे, ये एक मून का, एक मून जैसा, एक मून के साइज का एक एक पत्थर बोलो, यहाँ पे उसको पिरामिड कुछ भी बोल सकते हो आप, वो आके टकराया और उसके बाद उसमें से बाहर निकली, ये सूरज और हमारा चांद उसी हिसाब से बने हुए हैं। उसके बाद वो क्लेम करने लगे कि भैया जो सौरमंडल है ये सौरमंडल भगवान ने बनाया, लेकिन विज्ञान ने भी उसको प्रूफ कर दिया ये भगवान का बनाया हुआ नहीं है, उसको बनाया हुआ है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो ब्रह्मांड है ये भगवान का बनाया हुआ है। फिर क्या हुआ, फिर बता दिया कि भगवान का बनाया हुआ नहीं है, बिग बैंग का बनाया हुआ है। विज्ञान जहां जहां पहुंच रहा है आप उससे आगे पहुंच जाते हो, दिक्कत ही है
दीपक।
आप सवाल दीपक, जवाब नहीं
ढूंढ रहे। मैं आपका वीडियो फीड हटा के एक बार, ये तो अपने आप गायब हो गया।
मैंने हटाया।
अच्छा, आपने वीडियो फीड हटा दिया, ओके। हाँ अभी नहीं, अभी थोड़ा लैग कर रहा है। हाँ कोई बात नहीं, बोलिए आप।
तो समस्या यहाँ पर है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, एक मिनट के लिए मैं थोड़ी बदर बंदी कर देता हूँ, क्या पता दोबारा ठीक हो जाता
है। खाली ऑडियो करते हैं एक मिनट के लिए। हाँ सही है,
ठीक है। हाँ तो समस्या यहाँ पर है, हमारे लोग जो हैं, हमारे भले ही वो डॉक्टर बन रहे हैं बड़े बड़े, बहुत साइंटिस्ट बन रहे हैं, अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को आपको मानना पड़ेगा, वो उनकी जो फीडिंग हुई है बचपन से वो इस तरह की हुई है कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उनका सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। भाई आपको पता लगे कि भाई आपके जो माँ बाप हैं वो असली माँ बाप नहीं है, आपको टेस्ट ट्यूब बेबी किट उससे बनाया गया है, तो आपको कितना हर्ट होगा, होगा ना? तो भाई यहाँ पर भी वही वाला सीन है, हमारे जो सेंटीमेंट्स हैं,
मतलब बचपन से चने के झाड़ पे चढ़ा दिया गया है और अब उतरने का मन नहीं कर रहा है।
एग्जैक्टली हमारा हमारा, क्योंकि हम एक इमोशनल और एक इमेजिनरी स्पीशीज रहे हैं, और जब हमको पता लग, क्योंकि प्यार मोहब्बत एक हमारे हमारे कैरेक्टर के अंदर रही है, और जब हमको पता लगता है कि भाई जिसको मैं पूजता आया हूँ बचपन से, जिसके बारे में मैंने दिन रात मेरे माँ बाप ने पूजा पाठ करी, मेरे सामने करी, मैं बैठता था, मेरे हाथ में कलाया बनता था, मेरे टीका लगता था, वो सब बकवास था, तो उस चीज को वो एक बोले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। अब मैं उनकी उस चीज से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसी से कि एटलीस्ट जब उनके सामने विज्ञान आ रहा है तो उनको एक बार एक्सेप्ट करके न्यूट्रल तरीके से एक रिसर्च करना चाहिए कि ऐसा कुछ है नहीं है, वो बस मान के चल रहे हैं, वो सिर्फ मान के चल रहे हैं कि माँ बाप ने बोला होगा तो सही बोला होगा, हमारे पूर्वज ने कुछ लिखा होगा तो सही लिखा होगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रल होकर आपके सेंटिमेंट्स डेफिनेटली हर्ट होंगे, हमारे हुए थे जब हम थे, हमको वो भी तो बुरा लगता
है। क्योंकि क्योंकि हम इस टॉपिक पे हैं, आपके कैमरा ऑन होने के बाद ये वाला पूछूंगा, पर उससे पहले एक सवाल है, कैमरा ऑन हो गया पर लैग कर रहा है। हाँ, तो एक एक चैट है ट्विच से, स्पाइडरमैन से, उन्होंने पूछा है कि कैन सेक्युलर पर्सपेक्टिव्स फुल्ली रिप्लेस द मॉरल गाइडेंस ऑफर्ड बाय रिलीजन, क्या सेक्युलर विचारधाराएं धर्म हमें जो मॉरल गाइडेंस देती हैं उसको रिप्लेस कर सकती हैं?
एक सेकंड, मैं कैमरा भी ऑन करूंगा इसके लिए।
हाँ, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, अंटिल देन।
अभी ओके है ना?
हाँ, अभी ओके।
हाँ, क्या सवाल था कि कैन सेक्युलर
सेक्युलर पर्सपेक्टिव्स धर्म हमें जो मॉरल गाइडेंस देते हैं उनको रिप्लेस कर सकती हैं क्या?
क्यों नहीं कर सकती, मतलब उसमें प्रॉब्लम कहाँ है, एरर कहाँ पर है, मुझे ये तो बताओ।
तो और मुझे एक चीज, क्वेश्चनर का मानना है कि नहीं कर सकती, और आपको अभी बताना है कि सेक्युलर पर्सपेक्टिव धर्म को कैसे रिप्लेस कर सकती है।
अच्छा, कैसे रिप्लेस कर सकती है? देखो, अभी एक चीज मेरे को, मैं इसको इस हिसाब से देखना चाह रहा हूँ कि आज हमारी जितनी मॉरलिटीज हैं, आज हमारा जितने भी कल्चर हैं, वो केवल रिलीजन के रिलीजियस टेक्स्ट की वजह से नहीं है। ठीक है, वो सोशल डिस्कोर्स की वजह से हैं, वो डिस्कशन की वजह से हैं, वो डिबेट्स की वजह से हैं। ठीक है, आज सेकुलर वर्ड का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वर्ड भी कहीं ना कहीं डिबेट और डिस्कशन का पार्ट रहा है, और उसकी एक डेफिनेशन बनी है, और उसको हम एक नाम दे दें कि सेकुलर लोग इस पर्टिकुलर विचारधारा के होते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद अभी हमें जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि डिबेट और डिस्कशन की वजह से, हमारे डिस्कोर्स की वजह से हमने बहुत सारे लॉज बनाए हैं। ठीक है, जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट से। ठीक है, तो हमें इसमें सेकुलर थॉट को, हम चाहे सेकुलर थॉट बोलें, चाहे हम इसको एक 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 बहुत सारे लोगों का विचारधारा को इकट्ठा करके एक हमने कोई पर्टिकुलर किताब बनाई, चाहे वो संविधान हो सकता है कि आने वाले समय पर जिस प्रकार से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जा रहे हैं, संविधान से बेटर कोई हमारे को चीज मिले, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली वो रिलीजियस टेक्स्ट नहीं होंगे, वो रिलीजियस टेक्स्ट नहीं होंगे। और सेकुलरिज्म जो है, वो सेकुलरिज्म हमारे संविधान से निकलता है, सेकुलरिज्म बहुत सारे देशों के संविधान से निकल रहा है, और संविधान लोगों के विचारों से बने हैं, जिन्होंने संविधान सभाओं में बैठकर बनाए हैं। तो इसको आप सेकुलर वर्ड को, सेकुलर सोचने से पहले ये सोचो कि सेकुलर को सेकुलर बनाने वाले भी भारत के लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, और वो ह्यूमन हैं जिन्होंने अपना धर्म छोड़ा है, जिन्होंने अपने धर्म के रहते हुए भी सेकुलर अपनी सोच को, विचारधारा को आगे बढ़ाया। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज को मानने में कि भाई हम, आप मेरे को बताओ, सुबह से शाम तक आपका रिलीजियस में या फिर रिलीजन एक्टिविटी में क्या रोल रहा है? आप कुछ करते हो? आप पूजा पाठ कर रहे हो? नहीं, फिर भी ठीक हो। लेकिन हाँ, आपको आपकी आपकी आपके माइंड्स की बहुत सारी एक्टिविटीज की, मैं उसको वो कर दूं, उनको कंट्रोल करने के लिए एक संविधान जैसी चीज बहुत बड़ी पावरफुल काम कर रही है। ठीक है, वो अच्छा काम कर रही है। आप किस, वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत बेहतरीन, मैंने एक अभी एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को। आप एक व्यक्ति से बोलो कि अगर तू चोरी करेगा तो तेरे को भगवान ऊपर जाके नरक में सजा देगा, और एक व्यक्ति से बोलो अगर चोरी करेगा तो सिर्फ 100 नंबर पे कॉल करनी है मेरे को, तो देखते हैं कौन डरेगा, तो खत्म कहानी। सेकुलर थॉट जो है वो संविधान से निकलती है, और संविधान को बनाने वाले भारत के लोग हैं, बहुत सारे संविधान सभा के जो निर्माता थे, संविधान में जो हमारे सांसद MP बैठे थे, उन्होंने किया था। तो भाई इस कुल मिलाकर सारी जो चीजें हैं वो सोशल डिस्कोर्स से हमारे आई हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हो सकता है कि विमोह और मेरे बीच में किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट हो जाए और एक नई चीज निकले, हमारी डिस्कशन से कोई नई चीज निकले। तो आप नाम कुछ भी दे दो, सेकुलर दे दो, कुछ भी नाम दे दो, डजंट मैटर, मैं इस चीज को नहीं कह रहा हूं। कुल मिलाकर उस विचारधारा का आपके ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ता है, क्या वो रिलीजियस टेक्स्ट में लिखी हुई किसी बात से बेहतर है, तो ठीक है, हम उसका मोस्ट वेलकम करेंगे, जरूरी नहीं कि वो सेकुलर थॉट हो।
एक सवाल जो को माइंड में आता है आपके इस जवाब को सुनने के बाद, वो ये है कि हम भारत में इस समय एक विचित्र कंडीशन से गुजर रहे हैं, जहां पे कोई क्राइम करता है और आपको आप कहते हैं तेरा धर्म तुझे नहीं बचा पाएगा अगर मैं 100 नंबर पर डायल करूंगा तो, पर उसका धर्म उसको बचा लेता है।
भाई यही तो है ना इसके ऊपर क्या कहा जाए भाई, इसके ऊपर तो ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया इसके बाद देखो वो उनका धर्म उनको इसलिए बचा रहा है क्योंकि वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं बचा पाएगा। हो सकता है कि केवल इनकी पीढ़ी को बचा ले, हो सकता है कि उस व्यक्ति विशेष को बचा ले, लेकिन आने वाले जो उनके जनरेशन होगी वो धर्म उनको नहीं बचा पाएगा। वो इसलिए नहीं बचा पाएगा क्योंकि जिस धर्म की आड़ को लेकर वो गवर्नमेंट्स की, वो एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियों को छुपा रहे हैं, आगे जाकर उसका उनको बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। तो आप अपने आप को बचा लो।
उनको जो चीज बचा रही है वो उनका धर्म नहीं है, वो कोई नेता है जो कि उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस, उनका कल्चरल कास्ट वगैरह प्रिविलेज उनको बचा रहा है।
चलो उनको दिल रखने के लिए बात बोल भी दें कि धर्म ने बचाया है तो चिंता मत करो, ज्यादा लंबे समय तक नहीं बचोगे आप लोग। आप बच जाओ लेकिन आपकी जनरेशन जो है वो उसका उसका उसको नुकसान उसको होगा, आप बच के लिए नुकसान वो झेलेंगे, ठीक है? तो ये चीज है।
तो आपने कहा कि आपका मतलब आपको बड़ा किया गया था एक हिंदू परिवार के अंदर, आप भी मानते थे, सो क्या कोई स्पेसिफिक पॉइंट था जब आपने मानना बंद किया सुपरनैचुरल चीजों में और भगवानों में और फिर आप रैशनलिज्म की तरफ बढ़े, या ये बहुत स्लो था?
ये हुआ क्या था, किस तरह से हुआ था? जैसे कि मान लो अभी मैं किसी रिलीजियस एक्टिविटी में हूँ, मैं उस उम्र में हूँ, तो होता क्या था कि जैसे कि मेरा बहुत बचपन से शौक रहा था कि मैं डिस्कवरीज के शो देखता था, ठीक है? तो मैंने बियर गर्ल्स को बहुत देखा शुरुआत में, उसके वाइल्ड मैन वर्सेस वाइल्ड वाला, तो उस टाइम क्या था कि उन लोगों की जब मैं बातें सुनता तो मुझे बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में डाउट्स होते कि भाई वो बंदा ग्लेशियर्स में जा रहा है, यानी हमारे दुनिया में ग्लेशियर्स भी हैं, वो बंदा अमेजोन जंगल्स में जा रहा है, यानी यहाँ पर अमेजोन फॉरेस्ट हैं और इस तरह के हैं। तो मेरे को इसी बात पे बहुत बड़ा डाउट होता कि अगर ये दुनिया भगवान ने बनाई है तो भाई मतलब एक 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 एक, एक टर्म है, मतलब मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल कि अगर ये सारी दुनिया भगवान ने बनाई है तो उस भगवान का रूप इंसान जैसा कैसा हो सकता है? अगर दुनिया में 1 करोड़ स्पीशीज है, कोई भगवान सुअर क्यों नहीं, कोई भगवान कुत्ता या गधा के रूप में क्यों नहीं है, वो कोई वायरस क्यों नहीं है, वो HIV क्यों नहीं है?
वराह अवतार है, मत्स्य अवतार है, कश्यप अवतार है,
अरे वो तो बस वैसे ही ना। तो नहीं, लेकिन जो सुपीरियर जो बोलते हैं वो उसको व्यक्ति एक मर्द के रूप में बोलते हैं, फीमेल से भी नहीं, एक मर्द के रूप में बोलते हैं। हाँ, तो मेरा सबसे बड़ा टेंशन ये था कि भाई अगर भगवान है तो डेफिनेटली वो ईश्वर के, उनका जो रूप होगा, रूपरेखा होगी, वो ऐसी नहीं होगी, वो ऐसा इंसान के रूप में नहीं होगा, ठीक है? अब आप चाहे बिग बैंग को भगवान कह लो, लेकिन डेफिनेटली वो इंसान का रूप नहीं होगा। तो यहां से मेरे बहुत सारे माइंड में मेरी चीजें को बदलाव आया, मेरे को लगा कि यार कि ये अगर भगवान ने बनाया है तो उन्होंने जहर क्यों बना दिया, ठीक है? उसने जहर क्यों बनाया, पीने के लिए, मारने के लिए बनाया? अब लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, उनको सवाल दिमाग में ये वाला उठता है कि भाई अगर ये दुनिया भगवान ने नहीं बनाई है तो सारी चीजें इतनी बड़ी तरीके से काम कैसे कर रही है, हम सांस ले पा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब तक इस पृथ्वी पे परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, आप रह पा रहे हैं, आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है, तो आप जिंदा हैं, यानी कंडीशंस जो हैं वो आपके हित में है। अभी इस पृथ्वी पे कंडीशंस आपके हित में है तो आप जिंदा हैं, ठीक है? अभी एक अभी काम करते हैं, अगर आपको लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कंडीशंस भगवान ने आपके हित में बनाई हैं, तो आपको फिर आप गोबर क्यों नहीं खा रहे हो भाई? क्यों नहीं खा रहे? क्यों? गंदा है? नहीं गंदा नहीं, अरे भगवान ने बनाया यार, भगवान ऐसी क्यों चीज क्यों बना सकता है? मेरे कहने का मतलब है, भगवान ने अगर पृथ्वी को बनाया है, हमारे रहने के लायक बनाया है, तो फिर उसने जहर क्यों बनाया? उसने फिर रेटल स्नेक को जहर क्यों दिया है? दिक्कत ये है, दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ पर यही है।
मैंने आज तक किसी को ये कहते नहीं सुना था कि मैं नास्तिक बेयर ग्रिल्स की वजह से बना, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है बेयर ग्रिल्स को देख के। बेयर ग्रिल्स फॉर्चुनेटली इससे पहले कि हमारे प्रधानमंत्री उसका फायदा उठा पाते, वो चल बसे, राइट? वो नहीं है अब इस दुनिया में, नहीं तो उसके साथ भी शो कर चुके होते।
तो क्या रहा कि भाई ये जो कंसेप्शन रहा है लोगों के माइंड में, ये लैक ऑफ नॉलेज का रहा है, क्योंकि बात वहीं घूम फिर कर आती है जब आपको बचपन से यही बता दिया गया है कि भाई भगवान ने सब कुछ बनाया है, और इस चीज को लेकर के दुनिया कैसे काम कर रही है, आप उसको एवोल्यूशन के बारे में कैसे पढ़ेंगे? आप नहीं पढ़ोगे, आप क्यों पढ़ने लगे? आपको नहीं पता ना कि यहाँ पर कोल्ड एज भी रहा है, यहाँ पर स्टोन एज भी रहा है, आपको क्यों पढ़ना? आपको तो सीधा ये बता दिया कि भगवान ने ऊपर से मिट्टी से एडम ईव बना दिए और आप बन गए, उन्होंने ही पॉपुलेशन को आगे बढ़ा दिया। दिक्कत यह है जहां पर हमको सवालों के जवाब नहीं मिले हमने वहां भगवान को फिट किया हर जगह। दिक्कत यहाँ पर ये रही है। और आज भी हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। यूपीएससी के जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं वो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, और उनको एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने के बाद जब उनका एग्जाम क्रैक हो जाता है फिर वो भगवान के मंदिर जाते हैं पूजा पाठ करने। कितनी घटिया बात है। एंथ्रोपोलॉजी पढ़ कर आपने सिर्फ एग्जाम क्रैक किया, इट मींस आपने आपने उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, आपने इंफॉर्मेशन को माइंड में फीड करा, एग्जाम दे दिया, दैट्स इट।
आपने आत्मसात नहीं किया, आपने उसको प्रैक्टिकल रूप से अपनाया नहीं उस अंडरस्टैंडिंग को।
तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि भाई परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं, हमारे अनुकूल नहीं है। अगर हमारे अनुकूल होती तो आप अंटार्कटिका में जाकर रह सकते हो, आप समुद्र के अंदर भी सांस ले सकते हो। परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, इसका मतलब ये है अभी तक हम समुद्र के बाहर रह पा रहे हैं, ऑक्सीजन से जी रहे हैं, अभी ऑक्सीजन के अंदर और कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए अब मर जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। अगर सारी चीजें इतनी परफेक्ट हैं, किसी भगवान ने अपने सिस्टमेटिक तरीके से बनाई है, तो उसमें बहुत सारे लैग्स हैं जो कि भगवान नहीं बना सकता। यानी कुल मिलाकर वायरस एक जो एल्गी होती है, ठीक है, उसमें एक बहुत सारे वायरसेस होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। वो उसकी कंडीशंस ऐसी बन गई हैं पड़े पड़े कि आप उस एल्गी को खाएंगे नहीं खाएंगे। वो इसलिए नहीं खाएंगे क्योंकि आपको पता है कि वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, लेकिन वो किसी वायरस के लिए हेल्दी है। इसी प्रकार से फिलहाल ये एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे लिए हेल्दी है, लेकिन किसी और एलियन के लिए या फिर गधे घोड़ों के लिए हमारा फूड उसके लिए अच्छा नहीं है।
और ऐसे तो जानवर हैं भी जिनके लिए जो चीजें हम लोग हेल्थ के लिए खाते हैं, ऐसे ऐसे जानवर हैं जो कि पेनिसिलिन खा के मर जाएंगे।
एग्जैक्टली ऐसा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमको, पृथ्वी के बारे में बात करेंगे तो हम 1 करोड़ एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं।
हाँ,
कि भाई
सो यही था वो स्टेपिंग स्टोन जिसकी वजह से आपको लगा कि भगवानों के बारे में जो कहा जाता है वो सच नहीं होगा।
केवल एकमात्र यही ऐसी चीज थी जो मुझको सोचने पे अवेयर किया, और ये स्टेज में झटके से नहीं हुआ, ये 4-5-6-7 साल का गैप रहा। जिसके बाद अब होता क्या था कि भाई कई बार ऐसा हुआ फैमिली में, मेरे साथ ऐसा हुआ कि फैमिली में कोई समस्या आ रही है, लेकिन जिस तरह से हमारे घर की महिलाएं होती हैं वो सोचती हैं कि शायद ये चीज कोई सुपरस्टिशंस की वजह से हो रही है या फिर किसी ने हमारे ऊपर कुछ करवा दिया है। तो इस प्रकार की समस्याएं हमारे, मान लो घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अब मम्मी बात कर रही है कभी कभार, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक चीज में बुलेट पॉइंट करके बोल दूं, मेरी मम्मी एक नंबर रैशनलिस्ट है, एक नंबर एथिस्ट है, और मैंने उनको इस उम्र में बनाया है, शी इज 58 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। और मेरा मानना है अगर आपने अपने ओल्ड एज के जो आपके साथी हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को अगर आपने नास्तिक बना दिया तो मैं कह रहा हूँ आपने बहुत कुछ कर लिया, ठीक है। तो उनको इस तरह की एक्टिविटीज मेरे साथ नहीं, अब मुझे लगा घर में वो इस तरह से कर रही है, वो सोच नहीं है, लेकिन डाउट रहा कि यार काम मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ या फिर कोई घर में आकर वो कर रहा है, कोई दूसरा लड़ रहा है, उसमें मतलब इसमें सुपरस्टिशंस का क्या रोल है, इसमें किसी क्या करवा देने से क्या रोल है। मुझे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे माँ बाप के कहने से नहीं चल रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो मैं मेरे माँ बाप के कहने से नहीं चल रहा हूँ, मेरे को पता है कि मैं जानबूझ के नहीं चल रहा हूँ, लेकिन मेरी मम्मी सोच रही है कि मेरे बेटे के ऊपर किसी ने ऊपर कुछ करा तो नहीं दिया, ठीक है, और वो मैं हूं तो मैं सोच भी पा रहा हूँ एटलीस्ट, लेकिन मुझे पता है ना कि यार ये तो सब बकवास है, मुझे बैकएंड से पता है, मैं बैकएंड में हूं, मैं सोच रहा हूँ मम्मी जो कर रही है करने दो, लेकिन मुझे पता है कि मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, मैं कर लूंगा आने वाले टाइम पे, लेकिन मम्मी क्या सोच रही है, सुपरस्टिशंस या फिर ऐसा कुछ। तो सबको घर में जो भी कंडीशन होती है, हम सोचते हैं कि हमारा अभी जो काम है वो किसी पर्टिकुलर सुपरस्टिशंस या फिर सुपर पावर की वजह से नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब आपके दिमाग का खेल है। सबको सब कुछ पता होता है, घर में रहने वाले हर 5 अगर व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति को पता होता है कि वो कहीं ना कहीं कमी कर रहा है जिसकी वजह से घर में ये कमी आ रही है। उसको पता है कि वो ज्यादा बोलता है, उसको पता है कि उनके पिताजी हैं वो ड्रिंक करते हैं, उनको पता है कि उनकी मम्मी है वो यहाँ पर ये गलती करती है, लड़ाइयों के रीजन सबको पता होता है, बट वो उसको कंसिडर करने से पहले, उस चीज को इम्प्रूव करने से पहले वो सोचते हैं कि कोई सुपर नेचुरल पावर की वजह से हमारे घर में लड़ाई हो रही है, फिर पैसों की कमी है। और ये पर्सपेक्टिव बहुत सारे लोगों का माइंड में, बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के ऑलमोस्ट मेजोरिटी पॉपुलेशन जो 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 घर में जो घरेलू जो क्राइम हो रहे हैं वो उनको मेन कंसर्न ही उनका ये है। अगर आप लोगों के ऊपर थोड़ा सा काम करें, उनके मेंटेलिटी के ऊपर थोड़ा सा काम करें, उनको समझाने की कोशिश करें, फिर उनको बताएं कि एक्चुअल में अगर घर में समस्या आ रही है तो उसको किस तरह से टैकल करें, तो आप बहुत आराम से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आराम से आप इस चीज को टैकल कर पाएंगे। लेकिन हमारे लोग करते क्या है कि एक्चुअल में रूट कोज जाने से पहले वो सोचते हैं कि सुपरस्टिशन सुपरनेचुरल पावर, बट ऐसा नहीं होता है।
ओके सो मैं एक सुपर चैट पढ़ना चाहता हूँ. सागर थैंक यू फॉर द 100 rupees. सागर सेज जय साई दीपक एंड मेनी अदर्स हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू इफ देयर इज अ मॉब इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, डू यू सी इट एज अ कंसर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जय साई दीपक को ये बोलते हुए नहीं सुना है, मैंने किसी को भी ये पूछते हुए नहीं सुना है, सो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट. आई डोंट नॉट इम्प्लाई दैट आई अग्री विथ यू, बट द आंसर टू दिस इज द पुलिस आई थिंक, राइट? इफ देयर इज अ मॉब इन फ्रंट ऑफ योर हाउस.
हाँ मैं अभी अभी कुछ टाइम पहले हमारे एक साथी थे जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, सॉरी इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं, उनको एक उनके उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ की पुलिस उनको अरेस्ट कर लिया कि वो केवल वीडियोस बनाते हैं जिस तरह से मैं बनाता हूँ वो उस तरह से बनाते हैं. मेरी वीडियोज बनाने में और उनकी वीडियोज बनाने में थोड़ा सा मुझको फर्क लगा. काम बेहतरीन और बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन फर्क ये लगा, मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी को रिलीजियस को टारगेट करने से पहले हमें उसको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना बहुत जरूरी है. आपने और मैंने मिलकर किसी को एथिस्ट बना दिया इससे काम नहीं चलेगा, लेकिन उसके माइंड में वो सवाल जरूर आएंगे जो सबके सवाल दिमाग में है. हमने मान लो किसी को नास्तिक बना दिया, हमने बोल दिया कि भाई भगवान वगैरह नहीं होता, हमने ये तो बता दिया, लेकिन भगवान नहीं होता ये उसने मान लिया, लेकिन ये दुनिया कैसे है इसका सवाल का आंसर कौन करेगा, इसका भी तो हमें देना पड़ेगा ना. हमने नास्तिक भी बना दिया, अगर हमने उसको आंसर नहीं करा 2 साल वो नास्तिक रहेगा, तीसरे साल फिर वो भगवान के मंदिर में दिखाई देगा,
वापस आ जाएगा. और मैं तो मैं कई बार ये भी पॉइंट आउट करने की कोशिश करता हूँ कि कई लोग इमोशनल कारणों से धर्म छोड़ देते हैं, पर धर्म छोड़ने के बाद अगर उन इमोशनल कारणों को साइड में रख के लॉजिक उनको प्रोवाइड नहीं किया गया ना, तो कल परसों किसी और इमोशनल कारण की वजह से वापस धर्म में चले भी जाएंगे. आज इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुमने किसी को खो दिया, कल इसलिए वापस चले जाओगे क्योंकि तुमको किसी और को खोने का डर है और तुम प्रार्थना कर रहे हो.
यही यही दिक्कत है. अब है क्या कि हम लोगों को नास्तिक बना दें, इससे काम तो चलेगा ही नहीं. हमें नास्तिक बनाने के हमें नास्तिक नहीं बनाना, हमें बनाना है उनको, हमको ये बताना है कि होमो सेपियंस हम जो हैं, हम लोग अस्तित्व में कैसे आए. अगर हम उनको ये बताने में सक्षम रहे कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की वजह से दुनिया में सारी स्पीशीज आई हैं, तो उसके माइंड में से सारे सवाल जो धर्म को लेकर हैं कि किसी पर्टिकुलर धर्म के किसी भगवान ने इंसानों को बनाया है, वो सारे सवाल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. कोई बोलेगा ना कि हाँ एडम ईव को मिट्टी से इस तरह से लड्डू की तरह बना के रख दिया, तो बोले क्या बोल रहा है.
हाँ, उनको उस स्टेज पे लेके जाना जरूरी है जब वो किसी बकवास क्लेम को सुने तो वो खुद ही उसको एनालाइज कर पाए. और ये प्रॉब्लम कई बार मैं देखता हूँ, मतलब कोई आके बोलेगा कि मैं एक नास्तिक हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, और मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज नो, यू आर नाउ फ्री. तुम्हारे ऊपर अब कोई कमांडमेंट नहीं है, कोई रूल नहीं है, तुम्हें किसी प्रीस्ट का या किसी ब्राह्मण का सुनने की जरूरत नहीं है, तुम अब आजाद हो. दैट इज योर गिफ्ट नाउ, तो अपने लॉजिक का इस्तेमाल करो.
बाय द वे बताना पड़ेगा, हां जो लैक ऑफ आंसरिंग है हमारा वो दिक्कत है.
एक एक सवाल है बर्नाली से. बर्नाली थैंक यू फॉर द 100 rupees. व्हाई ह्यूमन साइकोलॉजी सबकॉन्शियसली ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस रिगार्ड्स मेल एज डिफॉल्ट, आर वी इवोल्यूशनरीली वायर्ड लाइक दैट? ये मैं पहले दीपक से पूछूंगा. दीपक आपको क्या लगता है कि हम लोग एक पुरुष प्रधान सोचने के तरीके से इसलिए ग्रस्त हैं क्योंकि ये बायोलॉजिकल है या ये सोशल है? हमको प्रोग्राम किया गया है पुरुष को प्रधान समझने के लिए, इसलिए हम मानते हैं, या नेचुरली हम लोग पुरुष ओरिएंटेड है?
देखें एक चीज हमको इस चीज को समझना पड़ेगा, मेल और फीमेल में जो मेल है वो एवोल्यूशनरी और पहले से ही फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहे हैं फीमेल से ज्यादा, ठीक है. अभी आप इस बात को आप इस चीज से देखें, क्योंकि पहले इंसान खेती नहीं करते थे, वो जंगलों में शिकार कर रहे हैं या फिर इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो उनको शिकार के लिए जंगल में आना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कोई पर्टिकुलर फीमेल उनका लाइफ पार्टनर है, इतना उनके अंदर उनका जो ब्रेन है इतना डेवलप हो चुका है, उनको यह पता है कि मेरी फैमिली है, और उसको ये पता है कि क्योंकि ऐसा उन्होंने अपनी फैमिली में पहले फीमेल्स को खो दिया है जंगल में जाकर शिकार करके लाने से पहले, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है कि जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं अपने अपने किसी ग्रुप के स्ट्रॉन्ग मेल्स को ये वाला ड्यूटी दिया है कि आप जाओ और हमारे खाने के लिए लेकर आओ, जो फीमेल्स हैं वो घर पर रहेंगी और हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे. और इस चीज को आप एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस में देखो कि क्या रहा होगा, आज की जो कंडीशन है वो उसी तरह से बनी पड़ी है कहीं ना कहीं. लेकिन मैं आज के पर्सपेक्टिव में इस चीज को नहीं मानता हूँ कि जो फीमेल्स हैं फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं है, दे आर स्ट्रांग, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छी स्ट्रांग है, लेकिन जो एवोल्यूशन
थोड़ा अलग है, मेरा ओपिनियन, सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा ओपिनियन इस पे थोड़ा अलग है, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कैमरॉन हर्ली का, जिसका नाम था वी हैव ऑलवेज फॉट, और वो ये था कि हमें आज के समय जब हम किसी कंक्लूजन, हम लोग सपोज 60,000 पहले साल पहले के इंसानों को देखें, प्रागैतिहासिक कल के इंसानों को देखें, हमें सिर्फ कंकाल दिखते हैं, और हम उन कंकालों को देख के कई नतीजों पर पहुंचते हैं, और उनमें से कई नतीजे इस बात का इस बात की वजह से होती हैं कि हम लोग आज एक पुरुष प्रधान समाज में रह रहे हैं, क्योंकि ऐसे वॉरियर्स मिले हैं वाइकिंग्स में जो औरतें थी, ऐसे सोल्जर्स मिले हैं बहुत पुराने युद्धों में जो कि औरतें थी आर्मर वगैरह के साथ, कंकालों से बहुत कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए उनमें से कई लोग इंटरसेक्स भी हो सकते थे, उनमें से कई लोग ट्रांसजेंडर भी हो सकते थे, और ये बात हमारे पास जानने का कोई तरीका नहीं है। सो हम लोग जब भी कहते हैं पुरुष प्रधान था और ये बायोलॉजिकल है, हम कई बार आज के सामाजिक सिस्टम के विक्टिम बन जाते हैं। मैं ये मानता हूं कि जनरली स्पीकिंग देर इज अ स्ट्रेंथ डिफरेंशियल बिटवीन व्हाट वी कॉल मेल एंड व्हाट वी कॉल फीमेल, पर ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि आज का जो पुरुष प्रधान समाज है वो इवोल्यूशन की वजह से हुआ है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी हद तक सोशियोलॉजिकल है।
आप ठीक हैं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम केवल एवोल्यूशन को एक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अभी आपने एवोल्यूशन को बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा कि फीमेल और मेल्स का बायोलॉजिकल प्रोसेस इस तरह से चला, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा उसी समय हम सोशल स्ट्रक्चर की तरफ भी बढ़ रहे थे। तो जो दोनों चीजें आपस में मिल रही हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम एक, आपको लग रहा है कि हम केवल बायोलॉजिकली ग्रोथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम इस टाइम सोशली भी कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो एक ही टाइम फ्रेम में बहुत सारी चीज चल रही थी, जिसकी वजह से क्योंकि हम ग्रो कर रहे थे और उस टाइम पर सोशल स्ट्रक्चर भी हमारा धीरे धीरे बन रहा था, तो उस सोशल स्ट्रक्चर की वजह से आज हम इस कंडीशन में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई केवल बायोलॉजी,
मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं, मैं समझ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वो इम्प्लाई कर रहे थे जिसका खंडन मैंने किया, वो मैं नहीं कह रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पेट्रियार्की है वो उतनी पुरानी नहीं है जितना कि कई लोग समझते हैं।
नहीं, ये बिल्कुल ठीक बोला,
ये आज के जमाने में कन्वेंशन है, और अगर आप प्राचीन काल के इंसानों की सभ्यताओं को देखेंगे तो आपको औरतें बहुत सारी चीजें करती हुई दिखेंगी, औरतें, इंटरसेक्स लोग, ट्रांसजेंडर लोग, सब कोई बहुत सारी चीजें करती दिखें। ऐसा एक काम नहीं मिलता जो कि नॉन मेल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी नहीं करते थे।
आज की पैट्रियार्की में और जो उस टाइम पर रही होगी, सपोज दैट रही भी होगी, तो जमीन आसमान का फर्क है। उस टाइम की पैट्रियार्की को हम एक प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मान सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक 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 फैमिली को चलाने के लिए एक सहयोग की भावना के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आज की पैट्रियार्की एक एक पैट्रियार्की की फीलिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं मर दूं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो और ये जो पैदा हुई है रिलीजन से पैदा हुई है, ये चीज पैट्रियार्की है, रिलीजन से पैदा हुई है, और वो जो अब हम सोच रहे हैं वो डेफिनेटली बिल्कुल सेक्युलर टाइप में रही होगी। उसका मतलब दबाव में या फिर सेक्स को नेग्लेक्ट करना, फीमेल सेक्स को नेग्लेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, उसका रीजन कुछ उस टाइम पे सर्वाइव करने की कंडीशंस में रहे होंगे कि हम सर्वाइव बेटर किस तरह से कर पाते हैं। लेकिन आज का पॉइंट ऑफ व्यू सर्वाइव का नहीं है, आज का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी ईगो का है, जो कि रिलीजन से पैदा हुआ है, जो कि हमारा समाज सोशल स्ट्रक्चर था, आगे जाके उसने रिलीजन का रूप लिया, और उस रिलीजन के रूप की वजह से जो पैट्रियार्की निकली उसका आज हम जो है पार्टिकल हम लोग हैं। तो इसमें फर्क है।
ये बताओ, एक छोटा सवाल है, पेट्रियार्की पहले आई या रिलीजन पहले आया? पेट्रियार्की रिलीजन को खा गई या रिलीजन पेट्रियार्की को खा गया?
पेट्रियार्की रिलीजन को खा गई या रिलीजन पेट्रियार्की को खा गया?
पेट्रियार्की को खा गया। पहले कौन सा आया आपके हिसाब से, आपको क्या लगता है?
मेरे हिसाब से अगर इसको एवोल्यूशनरी प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा मैं, तो ये चीज पेट्रियार्की है जो वो पहले आई है, और उसको रिलीजन का रूप देने के बाद उसको उसके ऊपर थोप दिया गया कि भाई अब ये, अब लग रहा कि अब ये रुक नहीं रही है, अब रिलीजन का वो डाल दो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि पेट्रियार्की ने पहले अपना अस्तित्व में आई है, उसके बाद उस चीज को कंटिन्यूटी बनाकर रखने के लिए हमें रिलीजन का सहारा लेना पड़ा है। बहुत सारी चीजों को हमको मानते रहने के लिए रिलीजन का सहारा लेना पड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है।
अच्छा, ओके। सो कुछ लोग हैं जो कि डिबेट के लिए बहुत दहाड़ रहे हैं, भैया कितनी बार बताऊंगा, सैटरडे को आओ, सैटरडे को लाइव स्ट्रीम पे फेस टू फेस बातचीत होती है, सैटरडे को आओ, लाइव स्ट्रीम पे लूंगा और हम लोग बात कर लेंगे अच्छे से। दहाड़ने की जरूरत नहीं, ऑल कैप्स में टाइप करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बार बार करोगे तो मैं तुमको टाइम आउट कर दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता इतना। there is a comment from Taranga, which was, oh, sorry. There's a comment from Dr. Pretty. My, Deepak, my best friend has turned superstitious and communal since a few years. I try explaining and reasoning with her beliefs, but failed. Can you please tell me what I can do to help her? Inki best friend andhavishwasi aur sampradayik ho gayi hai. इन्होंने उसे समझाने की कोशिश की पर फेल हो गई. क्या आप मदद कर सकते हैं?
उन्हें बस लाइव स्ट्रीम में बुला लीजिएगा किसी दिन.
कौन सी वाली? आपकी वाली या मेरे वाली?
आपकी, मेरी, कौन सी अलग है? कहीं बुला लो.
हाँ
तो हम यही पर कई बार का समझाने का तरीका अलग
होता है. हाँ, बेस्ट फ्रेंड एक अजीब सिस्टम होता है, अजीब इक्वेशन होता है, क्योंकि उनको छोड़ना कई बार परिवार को छोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल होता है. और मैं हमेशा से लेफ्ट पे नहीं था, मैं हमेशा से नास्तिक नहीं था. और जब मैं बीजेपी सपोर्टर, राइट विंगर हुआ करता था, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे जो कि बीजेपी सपोर्टर नहीं थे. मैं उस जहर को छोड़ के इस तरफ आ पाया, इसका एक बहुत बड़ा कारण मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे. सो हो सकता है आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी लाइफ से निकाल दें अगर उनके विचार बहुत ही ज्यादा घटिया हैं, या आप लिंक बरकरार रखें और इन टॉपिक्स पे बात करने से बचें, ताकि जब उनका माइंड चेंज हो और वो वापस आना चाहें तो आप वहां पे खड़े हों, उनका इंतजार कर रहे हो. मुझे नहीं पता आपका आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ कैसा इक्वेशन है, मैं उस बेसिस पे बता नहीं सकता. मैं उनसे बात जरूर कर सकता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो उनको यहाँ पे ला सकते हैं और हम बात कर लेंगे. आज नहीं, अगले सैटरडे, या फिर दीपक का इंस्टाग्राम हैंडल उनके नाम के नीचे दिख रहा है, वहां पे आप कहीं भी आ सकते हैं, उनसे बात कर लेंगे.
ये वाला सवाल मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि भाई मैं को किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नास्तिक बनाना है, या फिर
एक सेकंड बिफोर दीपक प्रोसीड्स, थैंक यू जेवी फॉर द 6 euros, मच अप्रिशिएटेड, गो ऑन.
तो बहुत सारे लोगों को मेरे पर सवाल आता है कि भाई मैं पर्टिकुलर व्यक्ति को नास्तिक कैसे बनाऊं, या फिर मुझे क्या करना चाहिए. देखो, हर किसी का ना अंधभक्ति का लेवल है और उसको उसी हिसाब से बात करनी पड़ती है. कई बार क्या होता है कि आप कितना बेहतरीन लॉजिक दे दो वो उनके पल्ले नहीं पड़ता. और कई बार क्या होता है कि आप छोटे छोटे लॉजिक्स को, यानी आप छोटी छोटी गोलियां मारो, बम आपको परमाणु बम छोड़ने की जरूरत नहीं है, तो छोटी छोटी गोलियां काम करती हैं. तो हर किसी को समझाने का तरीका अलग है, हर किसी की बुद्धि का लेवल अलग है. मैं बता दूं या फिर विमो भाई बता दें कि भाई आप ये वाला काम करो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. ये चीज बात करते करते पता लगती है कि कोई व्यक्ति किस तरह का सोच रहा है, हम फिर उस प्रकार के एग्जाम्पल से उनके सामने सेट करते हैं.
कई बार लोग कहते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम है, इसका एक सोल्यूशन बता दो, लाइक वन साइज फिट्स ऑल बनियान की तरह, कि मैं ये ले जाऊंगा और हर धार्मिक व्यक्ति पे अप्लाई कर दूंगा और मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा. ऐसा नहीं होता है. सो कई बार आपको बगैर लोगों से बात किए आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना है. इसीलिए मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ और वीडियोज नहीं बनाता, मतलब वीडियो बनाता हूँ पर कम बनाता हूँ. वीडियो में क्या होता है, वीडियो बनाएंगे आप, एक टॉपिक सामने रख देंगे, उसके नीचे 50 लोग 50 तरह के कॉमेंट लिख देंगे, बोलेंगे ये नहीं था पॉइंट, वो था पॉइंट, और फिर आप उनसे बात करने में 4 दिन बिताएंगे कमेंट्स में. फेस टू फेस बात करने में कई बार आसानी से चीज सॉल्व हो जाती है.
Exactly.
Anyway, we are at the 1 hour mark. एक घंटा हो चुका है. दीपक, आर यू विलिंग टू स्टे फॉर 5 more minutes? डू यू हैव टाइम और डू यू हैव टू लीव?
Sure. It's okay.
5 more minutes is okay? Okay. So, हमारे पास दीपक हैं, किसी के पास आखिरी कुछ क्वेश्चन है छोटे वाले तो चैट में लिखो, और उसके पहले लिखो क्वेश्चन फॉर दीपक और मैं दीपक से पूछ लूंगा. But before those questions arrive, I just want to remind everyone that this live stream is monetized. You can become a member and support it. Join button click karke. Patreon handle hai patreon.com/vimo. Wahan pe bhi support kar sakte ho. UPI handle hai vimo@upi. Wahan se direct paise bhej sakte ho. Ya www.vimo.in pe jaake support button pe click karke one time payment apni marzi ka kuch pay kar sakte ho. Ye content main full time banata hu. Main full time content creator hu ab. और आप सबकी स्पॉन्सरशिप्स की वजह से ही ये कंटेंट बन पाता है. सो थैंक यू इन एडवांस फॉर हूएवर कैन सपोर्ट. अगर कोई सपोर्ट नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, अपने बच्चों की कॉलेज फंड से पैसे निकाल के मुझे भेजने की जरूरत नहीं है. इट्स ओके, मुझे पता है इकोनॉमी खराब चल रही है, उम्मीद है सरकार बदलेगी, कंडीशन बदलेगी तो आपके पास भी ज्यादा पैसे आएंगे और आप तब सपोर्ट कर पाएंगे, पर अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है. राइट. सो जे भी का सवाल है, दीपक विमो लाइव, हैव यू रेड किलिंग द बुद्धा एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट यूजिंग बुद्धिस्टिक प्रिंसिपल्स टू प्रमोट रैशनलिज्म? इसके बारे में कोई विचार है आपका? क्या आपने किलिंग द बुद्धा पढ़ी है?
नहीं, मैं आपको वही बताने वाला हूँ. बहुत सारे लोगों का माइंड में एक बहुत बड़ा कंसेप्शन रहता है कि दीपक के नाम की पूछे आई एम दीपक बौद्ध लिखा है, इट मीन्स वो रिलीजन से बुद्धिस्ट है. मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ तथागत बुद्ध जो कि व्यक्ति विशेष थे उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ, और मेरा बुद्धिस्ट रिलीजन से कुछ भी लेन देना नहीं है, और ना ही मैंने उसकी एक भी पर्टिकुलर किताब पढ़ी। तो मैं जो केवल तथागत बुद्ध थे उनकी विचारधारा से बहुत इंप्रेस हूँ। ये उनको डेडिकेशन करने के लिए मेरे नाम के पीछे बुद्ध लगा हुआ है, तो हीन याम महायान मेरा इनसे कुछ भी लेने देना है नहीं। मैं
बीपिंग साउंड आपके यूपीएस से आ रही क्या?
इन्वर्टर का
लाइट चली गई। अच्छा इन्वर्टर, हाँ कुल 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 बताइए।
तो मेरा उससे किसी भी रिलीजन से कुछ भी लेने देना नहीं, ना बुद्धिज्म से ना हिंदुज्म से किसी से भी। मैं जो बुद्ध है मेरे नाम के पीछे, उसका उद्देश्य केवल तथागत बुद्ध जो है उनको डेडिकेशन करने के लिए। उसके बाद उस धर्म का कैसा नाश हुआ जो कि आज भी हो रहा है, और मुझे लगता है कि आगे वो बिगड़ेगा सुधरेगा नहीं, तो इसलिए ये डेडिकेशन सिर्फ तथागत बुद्ध के लिए। और right. इसलिए मैं so, मेरे ये... को लेकर तो मैं सिर्फ ये हमेशा ये जवाब देता हूँ, मैं नहीं बोल सकता किसी रिलीजन को सपोर्ट करना भी नहीं है, करूंगा भी नहीं।
ओके सो ये एक अविनाश शिंदे हैं जो कि ऑल कैप्स में सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको इनवाइट करता हूँ सैटरडे के लाइव स्ट्रीम पे, आइए फेस टू फेस बात कीजिए। आपने बहुत सारे गोचा क्वेश्चन पूछे हैं, मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ, पर सैटरडे आइए और फेस टू फेस पूछिए। कूल, थैंक यू। वैन स्टार्डर्स सेज, इज रैशनैलिटी द प्राइमरी मेंटल मॉडल, डू यू हैव अदर मॉडल्स टू यूज टू लिव बाय? ये सवाल इतना साफ नहीं है वैसे, क्या आपका प्राइमरी मेंटल मॉडल रैशनैलिटी है या आप किसी और मॉडल का भी इस्तेमाल करते हैं? शायद ये फिलोसॉफिकल है, जब आप रियलिटी को देखते हैं।
मुझे सवाल इसलिए नहीं लग रहा है, मुझे ये सवाल ही नहीं लग रहा है, वो इसलिए नहीं लग रहा है कि व्यक्ति ने टाइप करने से पहले अपने मेंटल स्टेज का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो भाई हम उसके बिना कुछ नहीं है, हमारे मेंटल स्टेज के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो फिलोसॉफिकली काफी अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, यार क्या सवाल पूछ लिया, बट एक्चुअली इसको कुछ ज्यादा सेंस होता नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आपका दिमाग नहीं है,
आप ये कह रहे हैं दीपक कि रैशनैलिटी के अलावा कोई और मेंटल मॉडल नहीं हो सकता?
एग्जैक्टली आप मतलब
नहीं, अगर आप असली दुनिया में रहते हैं और अगर आप रियलिटी को देख रहे हैं और नतीजों पर पहुंच रहे हैं तो आप ऑलरेडी रैशनल हैं।
एग्जैक्टली, और उसके लिए कोई हमें डॉक्यूमेंट थोड़ी साइन कराने पड़ेंगे, हम रैशनल आज बन गया, ऐसा नहीं होता। आप सोच रहे हैं, आप बात कर रहे हैं,
आज तक मैं कुछ और था, आज तक मैं साइंस के इस्तेमाल नहीं करता था। हर कोई करता है भाई, हर कोई करता है। तुम्हारे घर पे कोई आएगा और बोले कि 10 रुपए दो और ये चीज लो, तो तुम साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके ही इस नतीजे पर पहुंचोगे कि तुमको उसके ऊपर विश्वास करना है या नहीं। साइंटिफिक मेथड कुछ अजीब चीज नहीं होती, बट आई डोंट थिंक वैन स्टार्डर मेंट इट दैट वे, बट ओके राइट। सो आई थिंक आज का लाइव स्ट्रीम यहाँ पे समाप्त करते हैं क्योंकि 1 घंटे ज्यादा हो चुका है और मैं दीपक को बहुत ज्यादा बैठाना नहीं चाहता। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड दीपक लाइन पे रहिए, मैं आपसे थोड़ा और बात कर लूंगा ताकि शो के बाद वाले थोड़ी बात कर लें। अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, थैंक यू फॉर कमिंग टूडे, आई विल सी ऑन सैटरडे। आज जो भी चैट में दहाड़ रहे थे, प्लीज सैटरडे को आना, मैं तुमसे बात करना, बहुत अच्छा मजा आएगा मुझे। ठीक है, चलो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय,
थैंक यू। Hello, so good morning.